शांति। बाप समान संपन्न एवं संपूर्ण स्थिति। सुनते ही लगता है कि ब्रह्मा बाबा के समान जब स्थिति हो जाएगी तो कैसा अपने को लगेगा और कैसा दूसरों को भी अनुभव होगा, क्योंकि हमें तो ये सौभाग्य मिला है कि बाबा की संपन्न एवं संपूर्ण स्थिति को देखने का भी, अनुभव करने का भी, और बाबा उस स्थिति तक कैसे पहुंचे उसको भी देखने का मौका काफी मिला। वैसे आप सब बाबा के पुराने ही बच्चे हैं, तो आप सब ने शुरू से ही देखा होगा कि जब से ही बाबा ज्ञान में आए 1936 से, और जब से बाबा को साक्षात्कार हुए और बाबा ने उन्हें संकेत दिया साक्षात्कार के द्वारा, नई सृष्टि का भी अनुभव कराया दिखाया, और उससे पहले सृष्टि के परिवर्तन का, विनाश का भी अनुभव कराया साक्षात्कार के द्वारा, और जब नई दुनिया का अनुभव कराया बाबा को, तो बाबा को ये स्पष्ट संदेश दिया कि तुम्हें ऐसी सृष्टि बनानी है, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। बस बाबा तब से ही बहुत गहन सोच में डूब गए थे कि कैसे मैं सृष्टि बनाऊंगा, मुझे क्या करना है, और धीरे धीरे पाठ खुलता चला गया। यज्ञ की स्थापना हुई, बाबा ने संपूर्ण समर्पण किया एक बहनों की कमेटी बना करके, और समर्पण का भी पार्ट शुरू हुआ, होस्टल का पार्ट शुरू हुआ, आदि आदि, वो सब इतिहास तो आप सब जानते हैं। तो बाबा ने कहा है बच्चों को कि बच्चे पवित्र तो बन गए, ब्रह्मचारी तो हो गए, अब ब्रह्माचारी बनना है। ब्रह्माचारी माने ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हुए चलना है, और जब बाबा के कदम पर कदम रखते हुए चलेंगे तो संपन्न और संपूर्ण स्थिति को अवश्य पहुंचेंगे, जैसा कि ब्रह्मा बाबा पहुंचे। बस हमें तो सिर्फ बाबा के कदम पर कदम रखते हुए चलना है। तो पहला तो कदम यही था बाबा का कि बाबा ने मनसा वाचा कर्मणा बस अनुभव किया, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, और उसके बाद बाबा संपूर्ण रीति से स्वाहा हो गए। लेकिन हम सब लोगों के लिए बाबा का ये भी संदेश है कि कोई सबको उस रीति से सब छोड़ के यहाँ पर आकर के बैठना नहीं है, बल्कि जीवन में अनुभव करना है कि मुझे ऐसा बनना है, और उस अनुसार प्रवृत्ति में रहते हुए भी कार्य करना है। तो एक तो बाबा के इस कदम पर कदम रख करके चलते रहे, जब से हमारा ये नया जन्म हुआ है, हर एक का नया जन्म तो हो गया, तभी तो यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर आए हैं। लेकिन साथ ही साथ बाबा ने ये भी अनुभव किया, प्रैक्टिस की हर एक को आत्मिक रूप में देखने की, और उसके लिए बाबा ने लिखा भी, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, आदि आदि। तो हमें अपने को चेक करना है कि मैंने भी बाबा की तरह ऐसा अनुभव कितना किया है, कितनी प्रैक्टिस की है। बाबा ने तो लिख लिख के प्रैक्टिस की, चलो अगर लिख करके प्रैक्टिस नहीं हमने की, जब से भी हमें इसकी अनुभूति हुई, आज से ही चाहे कि भाई मेरा ये नया जन्म है, तो हर एक को हम भ्रकुटी में देखने का प्रयास करें। और उसका प्रमाण क्या है, कोई भी परिवर्तन होता है देखते हैं तो कुछ प्रमाण अगर हमें मिलता है कि मेरा ये अटेम्प्ट, मेरा ये पुरुषार्थ कितना सफल रहा, तो बहुत खुशी भी होती है। तो ब्रह्मा बाबा को यही हम देखते थे कि जब भी बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा ऐसे ही हाथ फैलाओ, बच्चे आओ, मीठे बच्चे आओ, आओ प्यारे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रन, और हम एकदम बस बाबा की बाहों में खींचते हुए चुंबकीय आकर्षण की तरह चले जाते थे। और बाबा की जैसे ही दृष्टि पड़ती थी और बस विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे। चाहे कोई नया हो, पहली बार जा रहा हो बाबा से पहली बार दृष्टि, तो बाबा ने ये चूंकि अनुभव किया था बहुत पक्का कि भाई मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, ये जिसको भी बाबा देखते थे उसका शरीर नहीं बल्कि उस आत्मा को देखते थे और उस आत्मा के प्रति प्यार रहता था, तो इसलिए वो आत्मा अशरीरी हो जाती थी। तो हम ये अनुभव करते चले कि जब भी हम योग युक्त होते हैं और साथ में किसी को दृष्टि देते हैं, तो वो आत्मा भी विदेहीपन का अनुभव करती है, अशरीरीपन का अनुभव करती है। और वो आत्मा अगर धीरे धीरे अनुभव करती है और बाद में अपना अनुभव ऐसा बताती है कि बस आपका दृष्टि पड़ा, दृष्टि ली और जैसे मैं अशरीरी हो गया या हो गई, तो इसका मतलब हमारा पुरुषार्थ ठीक रास्ते पर चल रहा है। लेकिन उसका अभ्यास तो करें, किसी भी आत्मा को बाबा की याद में बैठ करके उसको दृष्टि दे, भ्रकुटी की तरफ उसका हमारा ध्यान हो, नैनों में मुलाकात, नैनों में ये बात हो, साथ में बाबा ये कहता है आपका चलन और चेहरा भी, और उससे मुख पर जैसे मुस्कुराहट हो, दैवी मुस्कुराहट, नैनों में रूहानियत हो। और जब जितनी जितनी नैनों में रूहानियत होगी, मुख पर दिव्यता होगी, तो कहते हैं चेहरा जो है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, जो मन के अंदर चल रहा है वो ही चेहरा पर आता है। सबको अनुभव है, कभी क्रोध होता है तो चेहरा भी और आंखें भी वैसे ही लाल लाल हो जाती हैं। जब कोई किसी के प्रति बहुत स्नेह होता है, प्रेम होता है, तो भी वो भाव चेहरे पर रिफ्लेक्ट होते हैं। तो इसीलिए वो सब भाव जब मन के अंदर इतनी दिव्यता होगी वो चेहरे पर रिफ्लेक्ट होंगे। और यही था कि बाबा के पास जब भी कोई आता था, मिलता था, और तो बस अशरीरी हो जाता था। फिर बाबा ऐसे करके बुला के, हाँ बच्चे आओ आओ, जैसे फिर से उसको अनुभव कराते थे, नहीं तो वो तो जैसे अशरीरी। हम लोगों को ये अनुभव है क्योंकि एक मिलता था फिर दूसरे को आना होता था, तीसरा सभी पार्टी वालों को मिलना होता था वन बाय वन, तो इसलिए ऐसा अनुभव बाबा कराते थे कि वो अनुभव कभी भी जीवन भर भूलता नहीं था किसी को, और इसीलिए वो बाबा का बन जाता था। तो ये जो है बाबा समान, हमें सबको भी संपूर्ण स्थिति बनानी है तो एक तो हम ये सबको, जितने भी हमारे दिव्य परिवार के हैं, ज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं, संबंध संपर्क में आने वाले हैं उन सबको ये अनुभव करने कराने का प्रयास भी करें। इसके लिए बाबा कहता है एक साथ तीनों काम करो कि जब मानो किसी को भी हम बोलते हैं कुछ बताते हैं तो मन में उसके प्रति बहुत शुभ भावना हो, मुख से हम बोलें और मन के अंदर उसे शक्ति का और गुणों का दान करते रहें। और साथ ही साथ कर्मणा में जो भी हमारी बॉडी लैंग्वेज हो उसमें भी हमारी इतनी दिव्यता भरी हुई हो कि वो आत्मा को हम एक संपूर्ण रीति से दिव्य आत्मा अनुभव हो। बाबा के द्वारा सबको ऐसा ही होता था तो इस कारण से सब बाबा के बन जाते थे। और उसके बाद जब भी बाबा ने और क्या क्या किया वो तो सबने जीवन कहानी में पढ़ाई है, कितना बाबा ने दिव्य और अलौकिक प्यार दिया, स्नेह दिया, मार्गदर्शन किए बच्चों को। और साथ ही साथ बाबा टाइम टू टाइम अपने को चेक करते जाते थे कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूं और कितना बाकी है। कैसे चेक करते थे कि जब भी कोई संदेशी ध्यान में जाती थी तो वहां कई बार बाबा उस संदेशी को पूछते थे कि तुम वहां जाकर देखना जो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा है और जो यहाँ साकार दुनिया में मैं हूँ, तो हम दोनों में कितना अंतर है और वो आके बताना। तो संदेशी कई बार जाती थी और फिर संदेशी अक्सर करके यही संदेश लाती थी, बाबा आप दोनों में वैसे कोई अंतर नहीं पता चलता, वो ही सब कुछ है लेकिन थोड़ा तेज में अंतर है। वो जो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा है, अव्यक्त ब्रह्मा, संपूर्ण ब्रह्मा है, उनमें लाइट बहुत ज्यादा है, तेज बहुत ज्यादा है और वो उसी का बस थोड़ा सा ये अंतर है, बाकी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। फिर बाबा को ये अपने पुरुषार्थ में बाबा लग जाते थे। और हमने देखा जब से हम ज्ञान में आए तो उसके बाद से ही हम लगातार देखते थे कि पहले बाबा कितना समय हम लोगों को देते थे, कोई भी बात हम पूछते थे बाबा बताते थे, लेकिन धीरे धीरे बाबा एकांत और ज्यादा अंतर्मुखी होते जाते थे। कोई भी बात हम लोग पूछने जाते थे बस दो चार शब्दों में बाबा उत्तर दे देते थे और फिर बाबा एकदम न्यारे और प्यारे हो जाते थे। तो बाबा अब हम बच्चों को यही चाहता है कि हम लोग भी धीरे धीरे समेटते चले। जो भी विस्तार किया हुआ, हर एक का अपना विस्तार होता है, परिवार का होता है, लौकिक का, संबंधों का, कुछ सेवा का विस्तार होता है हर एक का, लेकिन धीरे धीरे हम लोग समेटते जाएं, क्योंकि हमेशा उस बात को बुद्धि में रखे अपने अंतिम क्षण को, जैसे मामा भी कहा करती थी अंतिम क्षण को अपने सदा, आज मेरा ये मेरा अंतिम क्षण है, उस बात को ध्यान में रखेंगे तो भूल भी नहीं होगी और संपूर्णता की तरफ चलते जाएंगे। तो बुद्धि में बस ये रहे कि अब मैं अपनी संपूर्णता की तरफ जा रही हूँ या जा रहा हूँ। तो बाबा को जब जितना जितना ये, तो बाबा ने समेटना शुरू कर दिया था चारों तरफ से, बहुत ज्यादातर का कारोबार दादी के दीदी के हाथ में था, करते पहले तो मम्मा के हाथों में था, फिर मम्मा का थोड़ा तबीयत जब उतना नहीं रहा ठीक तो दादी के और दीदी के हाथों में भी वो कर दिया, और मम्मा के बाद दादी प्रकाशमणि जी और दीदी मनमोहनी जी, उन दोनों ने ये कारोबार काफी प्रैक्टिकली वो संभाल के चलते रहे। और बाबा समेट के अपने पर्सनल पुरुषार्थ में धीरे धीरे हो रहे थे। फिर भी यज्ञ का कारोबार तो होता ही है, तो यज्ञ के कारोबार में भी बाबा का मार्ग प्रदर्शन सदा होता रहा। तो इस तरह धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। और जब मामा ने 1965 में शरीर छोड़ा तो उनकी एक घटना बताते हैं जो अपने सब लोगों के लिए भी मार्ग प्रदर्शना होगी और पुरुषार्थ के लिए। जब मामा शरीर छोड़ करके ऊपर वतन में सूक्ष्म वतन में गए तो वहां सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा उन्हें मिले वहां पर। और बाबा ने बस कहा, पूछा, बच्ची अच्छा कर्मातीत अवस्था का अनुभव करके आई हो? तो मम्मा तो यहाँ भी बाबा के सम्मुख ज्यादा बोलते नहीं थे और ज्यादातर वो अपना जो अनुभव होता था या कोई बात होती थी बहुत से रहला के बहुत उस रीति से बता देते थे, बिल्कुल दिव्य जैसे फरिश्ते होते हैं दिव्य रीति से। तो मम्मा ने वहां पर भी कहा कि नहीं बाबा, कर्मातीत अवस्था का तो मैंने अनुभव नहीं किया। तो बाबा ने कहा ऊपर सूक्ष्म वतनवासी बाप दादा ने कि जाओ बच्ची नीचे जाओ, नीचे अपना पांडव भवन में जो हिस्ट्री हॉल है वहाँ तुम्हारा शरीर रखा है, अभी सब योग कर रहे हैं शरीर है, तो जाओ उसमें प्रवेश करके कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ, बहुत बड़ी बात है। तो मामा फिर नीचे आए और उस जैसा भी बाबा ने बताया था वैसा उन्होंने किया, करने का पुरुषार्थ किया। और उसके थोड़ी देर बाद जब मामा फिर ऊपर गए तो बाबा ने पूछा, बच्ची अनुभव करके आई? तो मामा ने कहा, नहीं बाबा अनुभव तो नहीं किया। कि क्यों क्यों अनुभव नहीं किया? कि बाबा जब नीचे गई तो शरीर भल वहां पर था लेकिन शरीर बिल्कुल जैसे ठंडा हो गया था, और मैं उसमें प्रवेश भी किया लेकिन शरीर में कोई हलचल नहीं हुई, कोई चुरपुर नहीं हुई शरीर में, तो मैं कर्मातीत स्थिति का तो अनुभव करके नहीं आ सकी। तो उसके बाद फिर बाबा ने कहा मामा को, अच्छा बच्ची तो ये अनुभव नहीं किया और बिना कर्मातीत स्थिति प्राप्त किए तो कोई मुक्ति धाम जा नहीं सकता है, परम धाम जा नहीं सकता है, तो अभी तुम फिर शरीर में जाओगी, नए शरीर में जन्म होगा और जन्म ले करके फिर जब पुरुषार्थ तुम्हारा संपूर्ण हो जाएगा उसके बाद बिल्कुल वैसी स्थिति हो जाएगी जब जिस स्थिति में हम सब परम धाम से आए थे। यानी परम धाम से जब आए थे तो संपूर्ण पवित्र थे, पावन थे, कोई भी विकार नहीं था, तो उसी स्थिति को हमें प्राप्त करना है तब हम परम धाम जा सकेंगे। तो इसीलिए अभी तुम्हें फिर से जन्म लेके और नया पुरुषार्थ करना है और कर्मातीत अवस्था को, क्योंकि बिना कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किए हुए कोई भी आत्मा परम धाम नहीं जा सकती। भले हरेक की कर्मातीत अवस्था अपनी अपनी है, सबकी एक जैसी नहीं है, क्योंकि जैसा जिसमें पवित्रता अंतिम समय तक होगी उसी अनुसार से ही उसके जन्म होंगे और उसी अनुसार से परम धाम में भी सबका सीट है अपने अपने सेक्शन में, वहां पर आत्मा जाएगी बैठेगी। लेकिन जब आत्मा उतरेगी तो अपने समय पर सभी की सभी आत्माएं तो सतयुग के शुरू में नहीं आ जाएंगी, कुछ आएंगे जो ज्यादा पवित्र होंगे और उसके बाद धीरे 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 और आते जाएंगे सतयुग में और त्रेता युग के अंत तक आते ही रहेंगे। उसके बाद भी फिर आने का तो वन वे ट्रैफिक शुरू हो जाएगा, जाने का तो उस समय होगा नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अभी ये अंतिम जन्म में ये शरीर बच्चों का बहुत बहुत वैल्यूबल है, तो इसीलिए कभी भी ये संकल्प किसी को नहीं आना चाहिए कि कोई बीमारी है या कोई और कष्ट है, संबंधों में बहुत कटुता है, मन भेद मतभेद हो रहा है, कुछ भी हो, लेकिन ये संकल्प किसी बच्चे को ना आए कि मुझे ये शरीर छोड़ना है। चलो कई बार आता है, चलो इतना पुराना शरीर है, ये खिटपिट है तो छोड़े, नया जन्म मिलेगा, नए रीति से सब शुरू होगा, बच्चे भले हों लेकिन वो पहले के शुरू के तो 8-10 साल सब बेकार ही हो गए ना, कोई पुरुषार्थ तो होगा नहीं। तो इस कारण से एक बाबा ने जो संपन्न और संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया, तो कभी भी ये संकल्प बाबा को भी नहीं आया कि मैं ये शरीर छोड़ूं, या ऐसी स्थिति हो, भले बाबा को भी बहुत ओल्ड एज थी, कई व्याधि भी कई बार शरीर में होती थी, जैसे जब खांसी भी बाबा को होती थी, हम लोग देखते थे कि खांसी के जब बाबा को, कई बार बाबा की आंखें भी गीली हो जाती थी, बहुत कष्ट होता था। तो बस शुरू में ये कर्म भोग बहुत तेजी पर होता था और खांसी रूपी परिस्थिति आती थी, लेकिन बस धीरे धीरे बाबा के साइड में कृष्ण का ट्रांसलाइट होता था, लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट होता था, छोटे मिचनू कृष्ण का, तो बाबा कहता था देखो बच्चे, अभी तो देखो ये पुराना शरीर है, पुराने तत्व हैं, तमो प्रधान तत्वों का बना हुआ ये शरीर है, लेकिन कल बाबा जाके ऐसा मिचनू कृष्ण बनेगा और बस वहां पर तो नई दुनिया होगी, सतो प्रधान तत्व होंगे, सतो प्रधान तत्वों का बना शरीर होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, बहुत खुशी होगी, आनंद होगा। तो बच्चों को भी अभी से ही वही खुशी का खूब अनुभव करना चाहिए, खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए, ऐसा करके बाबा कई बार बताता था, ऐसा खूब अनुभव, इतनी खुशी हो कि कोई गम हो अगर तो खुशी जो है गम को खा जाए, गम बिल्कुल खत्म हो जाए, कभी भी ये संकल्प बहुत खुश, अरे कल हम जाके ऐसा बनेंगे और नया शरीर होगा, पुराना शरीर की कोई बात नहीं होगी, कष्ट बस ये तो अंतिम समय के अंतिम जन्म के कष्ट हैं, थोड़े थोड़े समय की बात है, ये बस खत्म हो रहे हैं और हम जाके ऐसा बने। तो संपन्न संपूर्ण स्थिति के लिए हमेशा ये अनुभव हम करते रहें, सदा के लिए पॉजिटिविटी रहे, किसी भी हालत में चाहे जैसी भी परीक्षा आए, नेगेटिविटी मन में ना आए, ये शरीर छूटे या किसी के प्रति कोई भी नेगेटिविटी हो, नकारात्मकता जीवन में बिल्कुल नहीं रहे, तो ये बाबा करते रहे तो संपन्न और संपूर्ण स्थिति की तरफ बढ़ते रहे, और साथ में हम भी ये चेक करते रहे कि मैं भी बाबा की तरह समेटती जा रही हूँ सब चीज, और जितना जितना मैं समेटता जाऊंगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है अंतमति सोगति, तो अंत में हमारी बुद्धि कहीं अटके नहीं, क्योंकि अक्सर करके जो सुनते आए हैं भक्ति मार्ग में भी और जीवन में, कि अंत में बुद्धि वहां अटकने की संभावना ज्यादा रहती है, जहां कोई बहुत विशेष लगाव रहा हो, झुकाव रहा हो, किसी व्यक्ति की बहुत याद हो, या किसी के प्रति कोई घृणा ईर्ष्या निगेटिविटी का संस्कार हो, तो ऐसे अगर हमारे मन में भी अंत समय अगर कोई भी संकल्प रहा, तो फिर तो वहां पर जन्म लेना पड़ेगा, वहां पर और हिसाब किताब बनेंगे और चुकतू भी होंगे, अगर बचपन में तो बहुत योग वगैरह कुछ कर नहीं सकते, तो इस कारण से कभी भी ये संकल्प ना आए, और बस कोई भी करे कुछ तो मन में यही संकल्प हो कि भाई जो करेगा सो पाएगा, हमें ये ना हो अरे ये इतने पुराने भाई इतने पुरानी बहन 40 साल हो गए 50 साल अभी भी ये ऐसा करते हैं, अभी भी इनका देखो क्रोध है, अभी भी इनकी दृष्टिवृत्ति ऐसी है। नहीं, हरेक को अपना बाबा के साथ साथ राजधानी भी स्थापन हो रही है, हरेक पुरुषार्थ कर रहा है और राजधानी में तो साधारण प्रजा भी होगी और महाराजा महारानी भी होंगे। तो जैसा जिसका पुरुषार्थ होगा उस अनुसार वो पद प्राप्त करेगा। इसलिए हमें बिल्कुल देखते हुए भी जैसे साक्षी दृष्टा हो करके देखना है। हाँ, खड़े हैं देख रहे हैं लेकिन देखते उसकी स्थिति का असर हमारे मन की स्थिति पर ना पड़े, साक्षी दृष्टा होके। इसीलिए बाबा ने कहा है साक्षी दृष्टा स्थिति। बाबा ने आंखों को इसीलिए इतना महत्व तो दिया है कि भाई शरीर में बहुत अंग है लेकिन सबसे ज्यादा ये क्रिमिनल अंग जैसे आंख है, क्योंकि जब आंख कुछ भी चीज देखती है तब उस अनुसार मन के अंदर संकल्प भी पैदा होते हैं, फिर वाणी और कर्म भी उस अनुसार चलते हैं। भले सूरदास ने आंखें फोड़ ली थी लेकिन उसकी रचनाओं से पता चलता है कि भाई मन पापी है, ये ऐसा है, वश में नहीं रहता है, तो तब उसे अनुभव हुआ होगा। और जो बाद में कि ये मन की बात है, इन आंखों की बात नहीं, आंखें अगर फोड़ भी लो तो भी मन के अंदर तो संकल्प उठेंगे, उसका तो इससे कोई कनेक्शन नहीं। तो इसीलिए हमें मन को हमें जीतना है, मन को हमें ऐसा करना है कि बस मन जीते जगत जीत हो जाए। और बाबा का वो हमने देखा जब अंतिम बाई चांस अंतिम दो दिनों में 17 और 18 जनवरी को हम बहुत दूर आसाम में पोस्टेड थे शिव सागर में इंजीनियरिंग पास करने के बाद, फिर बाबा ने साकार बाबा के पास गए कि बाबा इतनी जगह से ये ऑफर है ज्वाइन करने के 1967 में, तब तो साकार बाबा थे। तो बाबा ने कहा कि भाई इसमें जो ONGC में ज्वाइन करो। तो मैंने बताया बाबा इसका तो पोस्टिंग इतनी दूर है आसाम में, वहाँ कोई सेंटर भी नहीं है, 67 में तो वहाँ पर कोई गीता पाठशाला भी नहीं थी, कोई एक भी भाई बहन पूरे ईस्टर्न रीजन में नहीं था। तो हमने बाबा से कहा बाबा दूसरी जो दो जगह दिल्ली और हैदराबाद का ऑफर है वहाँ चले जाते हैं, वहाँ सेंटर भी है, पालना भी होगी। तो बाबा ने कहा नहीं, अब तुम्हें पालना देने के लिए जाना है, पालना लेने के लिए नहीं। इसलिए अब तुम वहां जाओ और वहां जा करके बस बाबा सारा काम कराएगा, तुम देखते रहना साक्षी होके बाबा कैसे तुम्हारे द्वारा कार्य कराता है। तो बस बाबा की श्रीमत अनुसार आसाम में वहां पर जाना हुआ और वाकई बाबा ने कैसे काम कराए कि बस बाबा हर सप्ताह पत्र लिखते थे कि बस बच्चे ऐसे चित्र लेके जाओ, चित्र फैला के बैठ जाओ लेख के पास, मंदिरों के सामने लक्ष्मी नारायण का मंदिर है और जो जो भी मंदिर हैं, और वैसे ही काम बस ऑफिस टाइम के बाद ऐसा करते थे। और बाबा के बच्चे जो बनने वाले होते थे, देखते तो बहुत थे लेकिन जो बनने वाले बच्चे होते थे वो पूछते थे क्या है कैसे है, और धीरे धीरे ऐसे बाबा के बच्चों की संख्या बहुत बढ़ती गई। एकदम नया ज्ञान था, सब चित्र देख करके बहुत, फिर वहां पर कई ऐसी मारवाड़ी माताएं भी बहुत आते थे, उन्होंने कहा हमारा मंदिर है, मंदिर में आप आके वहां पर बताओ, उनका अपना हॉल भी था। तो बस एक दो महीने के बाद भी हॉल भी मिल गया और हॉल में सत्संग वो होने लगा। तो देखो बाबा करण करावन हार है, बाबा कहता है करने वाला सब वो है, अपने को बस यही मैं इन कर्म इंद्रियों के द्वारा करा रही हूँ। अपने को हम करावनहार की स्थिति में जितना चलते जाएंगे उतना उतना हमें ये अनुभव होता जाएगा कि बाबा करा रहा है, मैं कर नहीं कर रहे हूँ। करनहार वो है और उसकी मत पर, श्रीमत पर, ये इन कर्मेंद्रियों के द्वारा मैं आत्मा कर्म कर रही हूँ, ऐसा अनुभव बच्चों को होगा। तो ये अनुभव होता था। और वहां पर जब ये क्लास वगैरह शुरू हो गई तो उसके बाद सबका काफी आत्माएं थी, छोटी बच्चियां भी थी 7-8 साल की, उन सबका जैसे ध्यान का पार्ट खुल गया। बस आते थे, बाबा के कुछ महावाक्य सुनते थे और ध्यान में चले जाते थे। तो और उन लोगों का ये पक्का होता गया कि अरे, और चारों तरफ ये हो गया कि वहां तो भगवान के दर्शन होते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। तो उस रीति से करण करावन हार बाबा है, और अगर निस्वार्थ भाव से बाबा की सेवा की जाए तो बाबा खुद उसका रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो ये सब जब अनुभव करते थे और बाबा ने जब भेजा तो हम वहां गए और इस तरह सर्विस का विस्तार होने लगा। और बाबा ने भेजते वक्त कहा था, बच्चे जाओ वहां पर सेवा करो और फिर बाबा समय पर बुला लेगा। तो जब बाबा ने ये कहा समय पर बाबा बुला लेगा, तो बहुत उस वक्त तो हम इसकी गुह्यता को नहीं समझ सके थे, लेकिन वहां पर थे और 68 और 69 जनवरी की बात थी। तो वहां से बस बाबा का जैसे इशारा कुछ हुआ, और जाना तो हमें देहरादून था, वहां से आए थे, लेकिन अपने हम और हमारे लौकिक पिताजी, उस समय हम लोग मधुबन आए। बाबा ने समाचार दिया कि बच्चे मधुबन आओ और प्लेन से आओ, तुरंत आओ। तो हम जाके मधुबन यहाँ 17 जनवरी की सुबह पहुंच गए। 17 जनवरी 1969, 18 को तो बाबा ने शरीर छोड़ा। तो उन दो दिनों में हमें बाबा की संपूर्ण स्थिति देखने का और अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन अंतिम दो दिनों में। और सबसे पहले एक बात तो ये देखी बाबा का कि बस बाबा के सम्मुख जाते थे कि बाबा को हमेशा की तरह ये बोलेंगे, ये पूछेंगे, लेकिन उससे पहले ही बस बाबा दृष्टि देते थे और दृष्टि दे करके बाबा पूछते थे, बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। तो ये जो बात होती थी मन की बात, जैसे तुरंत बाबा पढ़ लेता था। ये है बिल्कुल मन जीते जगत जीत की स्थिति, क्योंकि बाबा का अपने मन के ऊपर इतना नियंत्रण हो गया था। और इच्छा मात्रम अविद्या जो कहते हैं, इच्छा की भी अविद्या हो जाए और मन के अंदर कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं, और वो ही बाबा अब हम बच्चों को भी चाहता है कि आप बच्चे भी मेरे समान बनो, ब्रह्मा बाबा के समान, और फिर अंतिम संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके वहां जाओ। और ये देखा, 5-6 बार मिलना हुआ 17 और 18 जनवरी को हमें, और उस समय बाबा ने जो अनुभव कराया वो यही था कि बस ऐसी अगर हमारी स्थिति होगी, एकदम व्यर्थ संकल्प मुक्त स्थिति होगी अगर एक भी, तो हम दूसरे के मन के भावों को पढ़ लेंगे। और हमेशा ये अनुभव हुआ, बस बाबा सीधा दृष्टि दे करके और मन की बात बता देते थे और उसका समाधान भी दे देते थे। तो अब हम बच्चों को भी व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो करके ऐसी स्थिति बनानी है कि जैसा हम बच्चों ने ब्रह्मा बाबा के सम्मुख अनुभव किया, दूसरे हम लोगों के सम्मुख आए और यही स्थिति का अनुभव करें। और ये तब होगा जब हम ब्रह्मा बाप के समान बने हुए होंगे और ब्रह्मा बाबा के समान उनके कदमों पर कदम चल के रखते हुए चलते रहे। तो एक तो ये कर्मातीत स्थिति का अनुभव किया और दूसरा और साथ में क्या देखा कि बाबा ने चूंकि वैसे तो सभी काम बाबा समेट से जा रहे थे, समेटे हुए थे, लेकिन अंतिम दो दिनों में बाबा ने कुछ चीजों को समेटना जो बाकी था बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि बाबा को ये अनुभव हो गया था कि बस अब मैं जाने वाला हूँ। जो कर्मातीत स्थिति की आत्मा होगी उसे अंतिम समय के करीब लगभग आभास हो जाएगा कि बस अब मेरा काम यहाँ पूरा हुआ और अब मैं बाबा मुझे बुला रहा है। तो इसीलिए 18 जनवरी की सुबह बाबा ने बस आए, योग कराया, उस दिन क्लास नहीं कराई बाबा ने, योग ही कराया 18 जनवरी की सुबह और हर एक को दृष्टि दी बहुत शक्तिशाली। उसके बाद बाबा ने सारे पत्रों के उत्तर दिए और यीशु दादी को बोला कि बस सब पत्रों के उत्तर लिखवा लो, कोई भी ऐसा पत्र ना रहे कि जिसका उत्तर ना दिया हो, नहीं तो बाद में बच्चों को ये होता कि देखो हमने पत्र लिखा बाबा को और बाबा ने उत्तर भी नहीं दिया उसका। वो सब पत्रों के उत्तर दिए और मधुबन में उधर पांडव माउंट आबू में जो नक्की लेक के पास म्यूजियम है वो बिल्डिंग लेनी बाकी थी, कई दिनों से पेंडिंग पड़ी हुई थी, तो उस पर भी साइन करे बाबा ने कि अच्छा इस बिल्डिंग को ले लिया जाए और सेवा में लगा दिया जाए। तो ये भी ऐसे बचे हुए जो थोड़े बहुत काम थे वो बाबा ने संपूर्ण रीति से पूरे किए, जिससे अंत समय में ना ये याद न रहे कि अरे ये काम रह गया और वहां बुद्धि न अटक जाए। तो हम लोगों को भी बाबा कई वर्षों से समेट रहे थे, ऐसे धीरे धीरे हम सब भी समेटते जाए, कहीं बुद्धि न जाए। ये कई बार हम कहते हैं ना, मेरा मन में संकल्प है ये काम करूं, ये यज्ञ के लिए इतना करूं, ठीक है कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कल करते करते समय गुजरता जाता है, अपने शरीर का तो कुछ भरोसा नहीं। ऐसे ही कोई भी बात होती है घर की बात कि भई ये बच्चों को इसका चाबी देना है, घर की बहू को चाबी, ये काम करना है, मन के अंदर बहनों के अंदर भी कोई संकल्प न रहे, धीरे धीरे हम अपने मन को फ्री करते जाए, अंत समय के लिए तैयारी करते जाए, जो मेन इवेंट है शरीर छोड़ने का। तो इस रीति से बाबा ने बचे हुए सब काम किए और अंत में बाबा ने ये भी कहा आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा। तो उस दिन रोज तो क्लास 8:45 होती है, लेकिन उस दिन बाबा ने 7 ही क्लास का अनाउंसमेंट, पहले अनाउंसमेंट करवा दिया, आज बाबा 7 क्लास कराएगा, सब लोग भोजन करके आ जाए। तो हर एक ने को ये खास इंसिस्ट किया सब भोजन करके आए, क्योंकि बाबा का तो मालूम था उसके बाद कोई भोजन नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए सब आए और बाबा ने उस दिन अंतिम क्लास कराई 18 जनवरी की रात को। और जो क्लास उस दिन बाबा ने को न एक बार भी कफ हुआ, न खांसी हुई, कोई भी व्याधि नहीं हुई, जो इस बात का प्रतीक है कि जब हम सब भी कर्म भोग की स्थिति को सब चुकतु करके संपूर्ण कर्मातीत अवस्था के प्राप्त कर रहे होंगे, तो जितने भी कर्म भोग होंगे शरीर के वो सब चुकतु हो जाएंगे और कर्म योग जो है, हमारा योग बल जो है, वो कर्म भोग के ऊपर पूरी विजय प्राप्त कर लेगा। तो उस दिन बाबा को ना एक बार खांसी और कुछ नहीं, और बाबा ने मुरली चलाई और मुरली पूरा इतनी फोर्सफुल चलाई, और मुरली सुनते सुनते हम भी ऐसे ही सामने बैठ के मुरली सुन रहे थे, तो हमें भी संकल्प कुछ आया बाबा कुछ बोले, और हमारे लिए इतना दूर से ईस्टर्न रीजन, वहाँ आसाम से जहाँ पोस्टिंग थी शिव सागर, तो वहाँ से आए हुए हैं, तो चलो बाबा कुछ बोले। और जैसे ही हमारे मन में संकल्प आया तुरंत बाबा की तो स्थिति कर्मातीत थी, और इसीलिए बाबा अभी हम बच्चों को कहता है, बच्चों को दो शक्तियों का विशेष अभी ध्यान देना है, एक तो हमारी बुद्धि क्लीन और क्लियर हो, बस व्यर्थ संकल्प और ये इधर उधर की बातें कुछ ना आए हैं, क्लीन। और दूसरा बाबा जो कैचिंग और टचिंग पावर, क्योंकि अंत में सबको ये ही काम आएगा कि बाबा समय पर कुछ टच कराएगा और वो टच करके हमें भी कैच करके और उस अनुसार तुरंत हमारे कदम ऑटोमेटिकली वहां बढ़ जाएंगे जहां पर सेफ्टी होगी। ऑटोमेटिकली सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये तब होगा जब हमारी कैचिंग पावर बहुत क्लियर होगी। बाबा तो टच कराएगा, लेकिन अगर हमारी कैचिंग पावर में कोई कमी होगी और हम कैच नहीं कर पाए तो फिर हमारे कदम उधर कैसे बढ़ेंगे सेफ्टी की तरफ। तो इसीलिए बाबा अभी ये चाहता है। तो मन में संकल्प आया और बाबा ने तुरंत ही बस नाम लेके कुछ महावाक्य उच्चार दिए और जो देखो हमारे मन पर अभी तक भी छपे हुए हैं। तो भाव ये है, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि जी बाबा ने ये शब्द महावाक्य उच्चारे थे। देखो ये बच्चा 18 जनवरी की रात्रि क्लास में ये महावाक्य हैं, और वो कैसेट भी मिलती है, सीडी भी मिलती है, वो सब आप कहीं से ले सकते हैं। तो उसमें बाबा ने ये महावाक्य उच्च, देखो ये बच्चा मोहन है, बहुत बहुत मीठा बच्चा है, कभी किसी की निंदा नहीं करेगा और अंत तक संपूर्ण जरूर बन जाएंगे। तो इस तरह करके बाबा ने संपूर्णता का भी वरदान दे दिया। तो हमें समय प्रति समय बाबा की ये महावाक्य कानों में गूंजते रहते हैं। और भक्ति मार्ग में भी ये गायन है कि भक्तों के मन में इच्छा होती है कि भगवान का साक्षात्कार हो और कोई वरदान मांगे तो साक्षात्कार होता है। और भक्त जो है भगवान से कोई भी जो कामना होती है मुंह से बोलता है या मन में इच्छा रखता है तो भगवान के मुंह से क्या निकलता है, एक ही शब्द तथास्तु, बस। और भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो ये ही इस समय का ही गायन है। बाबा तो शिव बाबा ब्रह्मा के तन में तो आया ही हुआ था। तो इस तरीके से बाबा ने जो हम बच्चों को अनुभव कराया उस अनुभव के आधार पर ही हम सब आगे बढ़ते रहे। और आगे क्यों? क्योंकि जो हम लोगों ने बाबा से अनुभव किया अब पूरी दुनिया वाले हम लोगों के चाल चलन चेहरे मन वाणी कर्म उन सब से वो अनुभव करेंगे। और जब वो अनुभव करेंगे तभी तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ ये भगवान का कार्य हो रहा है। तो इसीलिए वो अनुभव करने के लिए बाबा भी चाहता है हम बच्चों को, जैसे मन के लिए तो हम पुरुषार्थ कर ही रहे हैं कि मन जीते जगत जीत, और वैसा बनते जाएं। और साथ ही साथ ये शरीर का जो 5 तत्व हैं इनकी भी हम सेवा करते जाएं, रोज इनको भी हम 5-7 मिनट अवश्य एक एक तत्व को भी योगदान करें। और बाबा का भी वैसे ही स्थिति थी, हमने देखा 18 जनवरी को जब बाबा क्लास करा के गए और बाबा ने बच्चों से कहा कि अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, पहले बाबा ने कभी ऐसा नहीं बोला, उस दिन अंतिम दिन ही ऐसा बोला, छुट्टी लेता है विदा लेता है। अब बाबा कमरे में गए, दादी जी भी थे साथ में, तो दादी जी के हाथ में हाथ और नैन मुलाकात करते हुए बाबा ने छुट्टी ली, विदा ली। और जब बाबा चले गए 2-4 दिन बाद भोग में बच्चों ने पूछा बाबा आपका अंतिम स्थिति का अनुभव कैसा था वो बताओ तो हम सब बच्चों को भी पता चले। तो बाबा ने बताया बच्चे अंत समय में बहुत पेन था क्योंकि हार्ट अटैक आया था। और बाबा ने कहा है शरीर तो सभी को छोड़ना है लेकिन सबसे अच्छे मृत्यु ये हार्ट की है, बस हुआ शरीर में और उसके बाद आत्मा चली जाए। तो ये जो बाबा ने बताया है तो उसके लिए बाबा ने अपना अनुभव बताया था कि अंत समय में युद्ध चल रही थी बहुत बड़ी, एक तरफ कर्म भोग की युद्ध हार्ट पेन और दूसरी तरफ बाबा की याद, मैं याद कर रहा था बाबा बस मैं आपके पास आ रहा हूँ योग बल से बाबा को याद कर रहा था, लेकिन शुरू में कर्म भोग बहुत था, दर्द बहुत था, लेकिन जितना जितना मेरा योग बल बढ़ता जा रहा था बाबा की याद बढ़ती जा रही थी कर्म भोग कम होता जा रहा था, यानी दर्द यानी कि स्वस्थिति जो है वो परिस्थिति के ऊपर विजय पाती जा रही थी। शुरू में परिस्थिति ज्यादा शक्तिशाली थी, स्वस्थिति कम थी, लेकिन धीरे धीरे स्वस्थिति मेरी मजबूत होती जा रही थी और परिस्थिति एकदम शक्ति विहीन होती जा रही थी, कमजोर होती जा रही थी, और फिर धीरे धीरे जब स्वस्थिति कंप्लीट शक्तिशाली हो गई तो परिस्थिति जैसे बिल्कुल समाप्त हो गई और बस मैं अनुभव कर रहा था कि आत्मा धीरे 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 शरीर से निकल रही है, पैर के अंगूठे से निकलते निकलते जैसे आत्मा की सर्व शक्तियां यहाँ पर केंद्रित हो गई प्रकृति में, और उसके बाद धीरे 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 जैसे आत्मा शरीर छोड़ के चली गई। और हम सबको भी यही अनुभव, जितना शरीर को भूला हुआ होगा हम लोगों ने उतना हमारी भी स्वस्थिति अंत समय इतनी शक्तिशाली होगी कि कोई और भी याद ना आए और बस परिस्थिति जो भी होगी वो खत्म हो जाएगी, और जैसा बाबा ने अनुभव किया। उसके बाद बाबा का शरीर 18 जनवरी की रात को भी रखा रहा, 19 तारीख की सुबह, 19 की रात, 20 तारीख की सुबह, 20 की रात और 21 को दोपहर के बाद संस्कार किया गया, क्योंकि बड़ी दीदी टूर पर थी, मनमोहनी दीदी, जब वो आई तब उसके बाद ये संस्कार किया गया। लेकिन बाबा का शरीर वैसे ही चमकता रहा, ना कोई इंजेक्शन दिया गया था, ना कोई शरीर पर लेप केमिकल लोशन लगाया गया था, तो बिल्कुल वैसा ही चमकता हुआ शरीर, ना कोई शरीर में दुर्गंध थी, कोई नहीं। तो ये शो करता है, ये बताता है कि 5 तत्वों के ऊपर भी बाबा ने जैसे विजय प्राप्त कर ली थी, मन के ऊपर तो करी ही, लेकिन इन 5 तत्वों के ऊपर भी जिनका ये शरीर है बना हुआ, इन पर भी बाबा ने विजय प्राप्त करी थी और बिल्कुल वैसा ही शरीर जैसे था। फिर उसके बाद बाबा के शरीर का जब संस्कार वगैरह भी किया गया और बाबा ने उसके बाद से फिर ये अव्यक्त पार्ट खुला, वो तो आप सबको मालूम है 21 जनवरी से मुरलियां किस प्रकार से अव्यक्त रीति से आती रही, और बाबा ने बीच बीच में इशारा भी दिया है, पहले ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने ज्ञान सुनाया, फिर दूसरा स्टेज थी गुलजार दादी के द्वारा अव्यक्त बाप दादा ने जैसे ज्ञान सुनाया यानी शिव बाबा ने उनके रथ के द्वारा, और फिर बाबा बीच बीच में समय प्रति समय इशारा भी, थोड़े दिन पहले भी एक साकार मुरली आई थी कि ये पार्ट भी जैसे कि पूरा होगा, और हर बच्चे को अपने को खुद जैसे संदेशी बनना होगा, यानी कि हमारी कैचिंग पावर इतनी क्लियर हो जाए। अभी तो जैसे गुलजार दादी जी के द्वारा शिव बाबा मुरली चलाते हैं, जो बाप दादा उसे हम सुन के अनुभव करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अब ये पार्ट चलना है, हम एक एक बच्चा जैसे ट्रांस मैसेंजर हो जाएगा और बस होता जा रहा है, और बाबा की मुरली जो बाबा चलाते हैं और जो भी बाबा इंस्ट्रक्शन देगा वो अंत समय हम कैच करके तुरंत ही बस उसको बता सकेंगे और जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, और उसी रीति से उसके आधार पर ही हम अंत में जो बहुत प्राकृतिक आपदाएं, बहुत पेपर आएंगे, उन सब पेपर्स पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए बाबा की जो संपन्न और संपूर्ण स्थिति इन कारणों से हुई, और इसी की तरह अभी हमें चलते चलते अपने को ये देखना है कि बाबा की तरह हम भी संपन्न और संपूर्ण बन जाएं और फिर ये कार्य जैसे और संपन्न हो जाएगा। लेकिन हमें बीच बीच में अपने को चेक करना बहुत जरूरी है संपन्न स्थिति का, और माइंड क्लियर, मन जो है, मन जीते जगत जी जो कहा है, माया जीते, तो इतनी क्लियर बुद्धि हो, क्लीन और क्लियर, कि बाबा के मैसेज हम पकड़ समझते जाए। तो बस ऐसा करते करते हम सब भी बाबा के साथ चलेंगे, और जाना तो हम सबको इकट्ठे ही है परम धाम, बाबा हमारा इंतजार कर रहा है सूक्ष्म वतन में, तो इसीलिए अब सबको, हम सबको भी वही स्थिति बस समेटते जाए, बुद्धि का विस्तार जितना समेटा हुआ होगा उतना उतना हम ऊपर की तरफ तैयार होते जाएंगे जाने के लिए, और समय पर जब बाबा का पैगाम आएगा तो बस अगर हमारी बुद्धि क्लियर होगी तो तुरंत पकड़ के चले। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।
तेरा दुलार, नहीं भूलेंगे बाबा तेरा दुलार। मधुबन में जो किया है, मधुबन में